ओम शांति। जिसको जीवन जीने की कला आती होगी वो रह सकता है शांति में। जो जीवन में युद्ध ही करता रहेगा वो कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से लोग आज लेख पढ़ते हैं हम अखबार के अंदर, लेख ही आता है और उसमें मेन बात आती है आज की लाइफ इट्स ए स्ट्रगल, युद्ध है। अब मैं इंडियन नेवी में रह चुका हूं, एक छोटी सी युद्ध के अंदर थोड़ा पार्टिसिपेट भी किया था। युद्ध में कभी शांति नहीं होती है, माफ करना, युद्ध माना अशांति। इसलिए आपको जीवन में युद्ध करना बंद करना पड़ेगा। जब युद्ध समाप्त हो तो शांति हो। अब युद्ध किससे होती है आप सोचिए थोड़ा। दूसरों के साथ ज्यादा नहीं चलती है, किसी के साथ अनबन हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, वो थोड़ा टाइम चलती है। युद्ध अपने साथ ज्यादा चलती है। किस बात की? जो हम आत्माओं के ओरिजिनल संस्कार हैं, आत्मा का स्वरूप क्या है? हाँ, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, यह आपका स्वरूप है। और बहनों को देख के मुझे आता है हमारे राजस्थान में, खासकर यहां जो आदिवासी बहनें होती हैं ना, वो इधर एक शीशा रखती हैं छोटा सा और बार बार अपना चेहरा देखती रहती है। तो ईश्वरी ज्ञान जो मिलता है वो है हम आत्माओं को अपना स्वरूप देखने का शीशा। लेकिन यहां पर मैं देखता हूं कि सभी को दिलचस्पी है। किस चीज की दिलचस्पी है? एक तो अपने स्वरूप को यथार्थ रीति से जानने की, समझने की, देखने की, और फिर उसमें जो थोड़ी मिक्सचर हो रखी है, थोड़ा कोई दाग लगा है कहीं, कट लगा हुआ है कहीं, समझते हैं ना, दाग क्या हो सकता है, कट क्या हो सकता है। कोई ऐसा पांच विकारों के वश होकर के कर्म हो चुका हो उसका दाग है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया वो कट है उसकी। और फिर इसके साथ में उसके कारण मन में जरा उथल पथल रहती है। घर के अंदर भी अगर चार पांच या दस भाई बहन रहते हैं, मां बाप के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, उसमें भी अगर थोड़ी सी मनमुटाव हो जाता है तो सब जानते हैं क्या हाल होता है। सारे परिवार वालों को चिंता हो जाती है अब क्या करें, घर में शांति कैसे। तो इसलिए सबसे पहली बात जो है जीवन में शांति, देखो छोटी टॉपिक नहीं है ये, लिखा हुआ इन्होंने बड़ा सोच करके मेरे को, जीवन में शांति। जीवन तो जब से होश संभालते हैं तब से लेकर के शरीर छोड़ने तक जीवन होता है। एक मिनट की शांति जो अनुभव करते वो नहीं है। एक दिन के लिए पहाड़ों पे घूमने चले गए और बड़ा आनंद लिया, शांति रही, बस वो शांति नहीं है। जीवन अर्थात जीवन, तो जीवन में शांति का आधार क्या है? उसका आधार जो भारत के बड़े बड़े योगियों ने अभ्यास करके किताबें लिखी हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, वो है उसका आधार। आप सोचेंगे हम बिजनेसमैन, हम थोड़ा संन्यास लेकर के बैठेंगे, बिजनेस के अंदर तो कारोबार करनी है, वहां ये बातें कैसे लागू हो सकती हैं? वास्तव में बिजनेस आपको थोड़ा बिजी रखने के लिए है, खेल की तरह है। वो नहीं होगा सिर्फ ऐसे ही आपको बिठा देंगे ना, थोड़ा यहां भी तीन दिन तो ठीक रहेगा, चार दिन, पांचवें दिन कहें कि बहुत अच्छा लगा तो रह जाओ इधर, कहेंगे नहीं बहन जी वो सारा कारोबार छोड़ के आए हैं, वो कैसे चलेगा? रिजर्वेशन नहीं होगी तो भी कहेंगे हम बिना रिजर्वेशन चले जाएंगे। जीवन अर्थात एक्टिविटी, सारे दिन में जो आराम करते हैं, नींद करते हैं, उस समय आप रेस्ट कर रहे हैं, थके होते हैं, नहीं तो आत्मा का स्वरूप ही है सदा जागृत रहने का, सोने का नहीं है। लेकिन जब शरीर थक जाता है तो फिर आत्मा डिटैच हो जाती है, जिसको आप नींद कहते हैं, उस समय भी आप देखेंगे आत्मा जाग रही है। स्वप्न आते हैं, कौन देखता है स्वप्न? सारे दिन में जो दिनचर्या होती ना, कुछ वो मिक्स्ड होती है, कुछ पुरानी बातें होती हैं, कुछ आगे की होने वाली भी आ जाती। स्वप्न आते हैं, पर स्वप्न देखता कौन है? शरीर तो आराम कर रहा है, आंखें तो बंद हैं उस समय, फिर भी आप देख रहे हैं। उसमें भी कभी बहुत अच्छे स्वप्न आते हैं, कभी बड़े भयानक आते हैं, डराने वाले आते हैं, और कई बार ऐसे आते हैं कि अचानक नींद में जोर से आवाज करेंगे तो सारे घर को उठा देंगे, सब कहेंगे क्या हो गया। तो आत्मा उस समय भी देख रही है, और इससे आगे की जो स्टेज है जिसको कहते हैं डीप स्लीप, गहरी नींद, उस समय भी कौन अनुभव करता है गहरी नींद का? आत्मा ही करती है। पर वंडर ये है, जब परिचय पूछेंगे ना किसी का, जो नेचुरल होना चाहिए वो नहीं है। नेचुरल परिचय होना चाहिए स्वयं का, आत्मा का। हम परिचय देते हैं अपने शरीर का, नाम, बिजनेस क्या करते हैं, कारोबार का, भाई ये तो आपने ये शरीर धारण किया है इसके कारण ये परिचय है। आपका ओरिजिनल परिचय क्या है वो नहीं याद रहता है। तो जो नेचुरल होना चाहिए वो भूल चुका है, जो टेम्परेरी है, कहते लाइफ आफ्टर लाइफ, सदा बिजनेसमैन रहेंगे कोई जरूरी नहीं है, सदा बहने बहने ही रहेंगी कोई जरूरी नहीं है, सदा भाई भाई रहेंगे कोई जरूरी नहीं है, अदली बदली भी होएगा, जैसा संस्कार ले जाएंगे वैसा होगा, जैसा हिसाब किताब ले जाएंगे वैसा होगा। लेकिन एक चीज शाश्वत है, वो है आत्मा, और आत्मा के अंदर कुछ शाश्वत है, वो है जो हम सबको प्रिय लगता है। अभी आपसे पूछता हूं, क्वेश्चंस आप पूछें उससे पहले मैं पूछता हूं, आपको शांति अच्छी लगती है या अशांति अच्छी लगती है? शांति। अगर अशांति हो जाती है तो क्या करते हैं? दिल होती है जल्दी से जल्दी शांति वापस आ जाए। जीवन में इतना धन कमाते हैं किसके लिए, किसके लिए कमाते हैं? सुख के लिए। बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनके बिना नहीं रह सकते। क्यों? क्या है उसमें? माता पिता से, भाई बहन से, पति पत्नी से क्या मिलता है? क्या मिलता है? स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है। प्यार के बिना नहीं जी सकते। इतने तक रिसर्च हो गई है कि अगर पेड़ों को भी प्यार मिलता है, हाँ, वृक्षों को भी प्यार मिलता है, पौधों को भी प्यार मिलता है, फूलों को भी प्यार मिलता है, तो वो ज्यादा हरे भरे, ज्यादा खुशनुमा, ज्यादा रंग रंगीले बनते हैं। इसेंशियल क्या हुआ लाइफ में? शांति, प्यार। और शरीर में अगर तंदुरुस्ती नहीं है, शक्ति की हीनता है, तो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो सदा स्वस्थ रहना, सदा स्वस्थ रहना, वो भी आत्मा का स्वाभाविक गुण है। इसलिए परमात्मा पिता जब हम बच्चों को ईश्वरी ज्ञान देते हैं, सहज राजयोग सिखाते हैं, तो सबसे पहले हमें लक्ष्य देते हैं। कहते हैं संपूर्ण पवित्रता, शांति और सुख मैं जीवन, सो भी 21 जन्म के लिए आपका ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है, गॉडली बर्थ राइट है। किस बात के आधार पर? सिंपल सा बोला, बी सोल कॉन्शियस एंड रिमेंबर मी। स्वयं को आत्मा निश्चय कर मेरी स्मृति में रहो, उससे क्या होगा? जैसा संग वैसा रंग। तो परम पिता परमात्मा जिसका इतना सुंदर परिचय मिला, उनके साथ हमारा निजी संबंध है। हम सब उनकी अनादि अविनाशी संतान है। तो अनादि अविनाशी संतान होने के नाते उनसे अनादि अविनाशी वर्षा मिलना चाहिए हमें, और वो वर्षा है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी रहने का। अगर उसमें कमी पड़ गई तो कहेंगे भाई ये भूल गए कि हम ईश्वरी संतान हैं। जब कभी आपको थोड़ा सा भी मन में अशांति हो, थोड़ा सा भी सुख की कमी हो, तो क्या करेंगे? स्वयं को ये स्मृति दिलाइए कि हम किसके बच्चे हैं। हम देखो, जब कभी कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं इनकी आत्मा को शांति देना। ठीक है, शरीर छोड़ने के बाद भई आप सबके पास भी तो शांति है ना, आप क्यों नहीं दे देते? भगवान से क्यों कह रहे हैं? नोइंगली और अननोइंगली हम लोग जानते हैं कि हम सदा शांत नहीं रहते, लेकिन एक पिता परमात्मा है जो सदा ही शांति का सागर है। सागर पर सागर किसके लिए है? हम बच्चों को देने के लिए। वो सदा सुख का सागर है, सदा प्रेम का सागर है, सदा आनंद का सागर है, किसके लिए? हम सब बच्चों के लिए। और अभी ये समझ में आया जब पिता परमात्मा का परिचय मिला, क्योंकि उसका परिचय वो स्वयं देते हैं, तब पता चला वो हमारे परम पिता भी हैं, परम शिक्षक भी हैं, परम सतगुरु भी हैं, वो हमारे मात पिता भी हैं, सखा बंधु सब कुछ हैं। तमेव माताश्च पिता तमेव, वो सारे उनका गायन है। अगर उनके साथ हमारे सर्व संबंध हैं, उस संबंध को स्मृति में रखने से सदा सुखी रह सकते। इसलिए महामंत्र है उस पिता का, स्मृति स्वरूप भव। स्मृति स्वरूप, जाप करने के लिए नहीं बोला शिव 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 शिव, वो नहीं कहा, नहीं, इस स्मृति के स्वरूप में आ जाओ कि हम कौन, किसकी संतान। और बहुत बहुत शांति, बहुत बहुत सुख हर समय रहे, उसके लिए बहुत सारी धारणाओं की बातें भी आती हैं। जीवन में सफल होने के लिए, सदा शांत और आनंद का अनुभव करने के लिए कुछ धारणाएं भी हैं। वो धारणाएं क्या हैं, मोटे रूप से बता देता हूं। आप सोच सकते हैं, जिन बातों से आपका मन विचलित होता है, जिन बातों से आपके मन में अशांति आती है, पहले से नहीं होती है, रॉन्ग विचार चलेंगे तो मन अशांत होगा, रॉन्ग कर्म होगा तो पश्चाताप होगा, ये दो बातें पक्की अपने अंदर सोच करके चलनी चाहिए। और अगर हम उनका त्याग कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा फायदे की बात सोचते हैं, अपने फायदे के लिए जो बात मुझे विचलित करती है, मुझे अशांत करती है, मुझे रात को नींद नहीं आने देती है, उसको पकड़ के रखने से फायदा नहीं है। क्या करेंगे? तैयार हैं भाई? इस नकी लेख पर सब डाल के जाना, अपने पास नहीं रखना, ऊपर घूमने जाएंगे ना। तो ये एक रियलाइजेशन की बात है, सेल्फ रियलाइजेशन का भाव क्या है, जिस पर योगियों की इतनी बड़ी बड़ी शोध होने के बाद किताबें लिखी गईं, उसका भाव यही निकलता है कि जो चीज हमारे लाभ की है उसको हम दिल से स्वीकार करें, जो हमें नुकसान कर रही है उसको हम त्याग दें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो टेम्परेरी तो आपको सुख दे देती हैं, बाद में दुख देती हैं। मैं मिसाल दे रहा हूं, आजकल छोटे छोटे पैक मिलते हैं बहुत सारे, चारों तरफ लटके रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गुटखा बोलते हैं, कुछ इस तरह का नाम देते हैं, ऊपर लिखा भी होगा भाई ये हानिकारक है, लेकिन लोग टेम्परेरी सुख के लिए वो खा लेते हैं, खाते खाते उसका इफेक्ट होने लगता है शरीर के ऊपर, अंदर भी, पेट में भी, मुख में भी, और बाद में डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है और बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। तो जो अल्पकाल का सुख देती है चीज और बाद में दुख देती है, उसका त्याग करना पड़ता है। और जिसको अपनाने में थोड़ा मेहनत लगती है शुरू में, क्योंकि दुनिया सारी एक तरफ जा रही है और आपने अपनी कार का रास्ता थोड़ा दूसरी तरफ मोड़ना शुरू कर दिया है, सोचना थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे क्योंकि मैं जानता हूं बिजनेस में शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, बिजनेस के अंदर भी जमाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से सदा शांति और सुखमय जीवन बनाने के लिए भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या मेहनत है? मेहनत इतनी सी है जो अच्छी बात है, जो सच्ची बात है, जो ईश्वरी बात है, जिससे हमारा जीवन सदा तंदुरुस्त, सदा धन धान्य संपन्न और सदा सुखमय बन सकता है। उस ईश्वरी ज्ञान को अपनाना है। और जो हमारे काम की चीज नहीं है उसको क्या करना है? अलविदा करना है। वो हमारी एक बहन है, वो जहां कहीं भी अलविदा तनाव का प्रोग्राम रखती है, हजारों भाई बहन उसमें आकर के पार्टिसिपेट करते हैं। तनाव कोई नहीं चाहता है, पर तनाव के कारण को निकालेंगे तो तनाव हटेगा ना। आपके पांव में कांटा लगा हुआ है और आप कहें भाई ऊपर से थोड़ा थोड़ा ठीक कर दो, कांटा अंदर चुभता रहेगा, तनाव कैसे जाएगा, शांति कैसे होगी? तो एक है तनाव मुक्त होना, उसका सहज तरीका है तनाव लाने वाली बातों का त्याग करना, पांच विकारों का त्याग करना। मंदिर में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इन पांच विकारों से बचाना। गुरुद्वारे में जाते हैं, वहां पर अरदास करते हैं, हे वाहेगुरु काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचाना, सब कहते हैं। मस्जिद में जाएंगे वहां भी कहेंगे हे खुदा इन शैतानों से बचाना। तो खुदा कहता है मैं तो आपको अपने स्वरूप में गढ़ा था। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। गॉड का इमेज तो बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल शांति में है, बिल्कुल प्रेम में है, बिल्कुल शक्तिशाली आनंद में है। उस स्वरूप को इमर्ज करो अपने दिल में, और जो मुखौटा पहन लिया है पांच विकारों के वश उसको उठा के फेंक दीजिए। इस समय पांच विकारों का मुखौटा रावण का पुतला बनाते हैं, कितने फेस बनाते हैं उसके? दस बनाते हैं ना। क्यों भला दस बनाते हैं जबकि विकार तो पांच ही हैं? तो कोई कहते हैं पांच विकार स्त्री के, पांच विकार पुरुष के, इसलिए दस बनाते हैं। चारों हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं उसके, बड़ा ज्ञानी बताते हैं रावण को। और सिर के ऊपर क्या था, कौन सा शीश था? गधे का सिर लगाते हैं। क्या भाव है उसका? वो पिताश्री ब्रह्मा बाबा बहुत प्यार से समझाते थे कि धोबी का जो गधा होता है ना, उसके ऊपर धुलाई किए हुए कपड़े रख के लाते हैं, पर कहीं बीच में बैठ गया सारे कपड़े खराब कर देता है मिट्टी के अंदर। तो अगर सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद, सब शास्त्र वेद ग्रंथ पढ़ने के बाद भी पांच विकार के वशीभूत रहे तो क्या फायदा रहा? इसलिए अभी तक भक्त थे, आज से ज्ञानी तू आत्मा बन जाओ। ज्ञानी तू आत्मा अर्थात जो समझ से काम ले। और समझ कौन सी? पांच विकार हमारे महादुश्मन हैं, हमारी शांति और सुख मिट्टी में मिला देते हैं। इनके ऊपर विजय पानी है। इनके ऊपर विजय पाएं तो दिवाली पर जो श्री लक्ष्मी आपके घर आती है वो आप स्वयं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बन जाएंगे। जब शादी होती है दुल्हन को लेके आते हैं, किस स्वरूप में होती है बहनों? क्या कहते हैं उस समय, कौन आई हमारे घर में? श्री लक्ष्मी आई है। और श्री लक्ष्मी किसके घर में आती है? श्री नारायण के रूप में। तो ये गायन चला आ रहा है। देखो हमारे क्या कहते हैं इसको, रस्म और रिवाज के अंदर एक नेचुरल रूप से चला आ रहा है। अगर वही स्वरूप सदा रहे श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, तो घर घर स्वर्ग बन जाए, भारत स्वर्ग बन जाए। तो जीवन में शांति अर्थात फिर से नर से श्री नारायण बनने का, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का, वो परम पद प्राप्त करने का संकल्प लेना है आज।